राजा युद्धविराम अक्टूबर 2025 लगभग ठीक दो साल बाद, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स और एक संयुक्त राष्ट्र जांच पैनल ने स्पष्ट रूप से नरसंहार के रूप में वर्णित किया है, वे आखिरकार समाप्त हो गया है या कम से कम एक अस्थायी विराम तक पहुंच गया है। युद्धविराम की शर्तें। 6 अक्टूबर 2025 को घोषित युद्धविराम को कूटनीतिक हलकों में नाजुक, अनिश्चित और सशर्त के रूप में वर्णित किया जा रहा है, लेकिन ये विवरण केवल सतह को छूते हैं। शर्तें स्वयं जमीन पर शक्ति की विनाशकारी असमानता, सहन की गई पीड़ा की गहराई और लगभग दो वर्षों तक बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के व्यवस्थित उल्लंघन की गहराई को उजागर करती हैं। बंधक विनिमय। युद्धविराम का सबसे दृश्यमान हिस्सा एक कैदी और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का विनिमय है। हमास को अपने कब्जे में बचे हुए 20 इजरायली बंधुओं को रिहा करना है। अक्टूबर 2023 की उग्रता के दौरान या बाद में पकड़े गए नागरिक और सैनिक, इसके बदले में इजरायल द्वारा हिरासत में लिए गए 1950 फिलिस्तीनी हिरासतियों की रिहाई होगी। इसमें 250 कैदी और 1700 व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें प्रशासनिक हिरासत में रखा गया है, वे लोग जो बिना किसी आरोप, मुकदमे या दोषसिद्धि के कैद में हैं। प्रशासनिक हिरासत, जिसे लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पर्यवेक्षकों द्वारा निंदा की गई है, इजरायल को सैन्य कानून के तहत फिलिस्तीनियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। रिहा किए जाने वाले कई लोगों को कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच के बिना हिरासत में रखा गया है, अक्सर गुप्त साक्ष्य के आधार पर, जो हिरासतियों और उनके वकीलों दोनों से छिपाए गए हैं। अन्य को इजरायली सैन्य अदालतों में दोषी ठहराया गया, जो लगभग 100% दोषसिद्धि दर के साथ संचालित होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्यूनतम निष्पक्ष प्रक्रिया मानकों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की गई हैं। शायद सबसे भयावह वे परिस्थितियां हैं जिनमें इन व्यक्तियों को रखा गया है। युद्ध के दौरान और विशेष रूप से पिछले वर्ष में कई मानवाधिकार संगठनों से विश्वसनीय रिपोर्टें सामने आई हैं जो इजरायली जेलों और हिरासत केंद्रों में फिलिस्तीनी हिरासतियों के साथ अमानवीय, अपमानजनक और अक्सर हिंसक व्यवहार को दस्तावेज करती हैं। इसमें भूखमरी, चिकित्सा देखभाल से वंचित करना, मारपीट, यौन अपमान, लंबे समय तक तनाव की स्थिति में रखना और कुछ मामलों में बलात्कार शामिल है। कई हिरासतियों की हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इनमें से किसी भी आरोप की इजरायली अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र जांच नहीं की गई है। यह विनिमय, हालांकि आंशिक रिहाई है, एक कूटनीतिक इशारा से कहीं अधिक है। यह कब्जे की यांत्रिकी, फिलिस्तीनी अस्तित्व की व्यवस्थित अपराधीकरण और अधिकारों के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत की सामान्यीकरण में एक खिड़की है। मानवीय सहायता। प्रतिदिन 600 ट्रक। युद्धविराम की शर्तों के तहत इजरायल ने गाजा में प्रतिदिन 600 ट्रकों की मानवीय सहायता की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। यह संख्या 2023 की युद्ध पूर्व स्तरों से काफी कम है, लेकिन हाल के महीनों में अनुमति दी गई राशि से काफी अधिक है। युद्धविराम से पहले कुछ दिनों में 20 से भी कम ट्रक प्रवेश करते थे, भले ही भूखमरी और व्यापक बीमारियों की स्थिति थी। यह प्रतिबद्धता कागज पर प्रगति की तरह लग सकती है, लेकिन यह भी एक मौन स्वीकार रोकती है। लगभग दो वर्षों तक इजरायल ने गाजा में सहायता को व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध किया। भोजन, पानी, दवा, ईंधन और पुनर्निर्माण सामग्री, भयावह मानवीय स्थिति के बावजूद। यह अवरोध प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेष रूप से नियम 55 का उल्लंघन करता था, जो जरूरतमंद नागरिकों के लिए मानवीय राहत के मुक्त मार्ग को अनिवार्य करता है। यह चौथे जेनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 55 और 59 का भी उल्लंघन करता था, जो कब्जा करने वाली शक्तियों को नागरिक आबादी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने और राहत प्रयासों की अनुमति देने के लिए बाध्य करता है, जब वे बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं। इसके अलावा 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अस्थायी उपाय जारी किए, जिसमें इजरायल को नरसंहार के कृत्यों को रोकने और मानवीय सहायता को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देने का आदेश दिया गया। इन उपायों को नजरअंदाज किया गया। अब दबाव में इजरायल द्वारा सहायता शर्तों की स्वीकृति उदारता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यह उन दायित्वों के साथ लंबे समय से विलंबित अनुपालन का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें उसने अवैध रूप से उल्लंघन किया था। और ट्रकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि बेरोकटोक पहुंच, सहायता कर्मियों की सुरक्षा या उस क्षेत्र में समान वितरण होगा जहां 80% से अधिक आबादी विस्थापित है, कई लोग बिना आश्रय या स्वच्छता के रह रहे हैं। सैन्य पुनर्स्थापन। गाजा 53% तक सिकुड़ा। युद्धविराम समझौते का तीसरा स्तंभ इजरायली सैन्य बलों के पुनर्स्थापन से संबंधित है। इजरायल रक्षा बल IDF एक तथाकथित पीली रेखा तक पीछे हटेंगे, एक अस्थायी सीमा जो गाजा का 53% हिस्सा निरंतर प्रत्यक्ष इजरायली सैन्य कब्जे के तहत छोड़ देती है। यह प्रभावी रूप से गाजा के कार्यात्मक रहने योग्य क्षेत्र को इसके मूल क्षेत्र के 47% तक कम कर देता है, जिसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं। यह कदम उस चीज को औपचारिक रूप देता है जिसके बारे में कई पर्यवेक्षकों ने पहले ही चेतावनी दी थी, यह युद्ध न केवल दंडात्मक था बल्कि क्षेत्रीय भी था। आधिकारिक इजरायली इनकारों के बावजूद कि यह पुनर्कब्जा है, युद्धविराम का नक्शा एक अलग कहानी बताता है। जो इजरायली नियंत्रण में रहता है उसने प्रमुख सड़क गलियारे, रणनीतिक जल और ऊर्जा बुनियादी ढांचा, कृषि भूमि और गाजा का उत्तरी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा शामिल है जो अब रहने योग्य नहीं है। संक्षेप में, गाजा को विभाजित कर दिया गया है न केवल मलबे और विस्थापन द्वारा बल्कि सैन्य विभाजन द्वारा। 1 मिलियन से अधिक लोग अब दक्षिणी गाजा के एक छोटे से हिस्से में ठसाठस भरे हुए हैं, कई बार विस्थापित, उन घरों से कटे हुए हैं जिनमें वे शायद कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। युद्ध विराम इसलिए कब्जे को उलट नहीं करता, यह इसे और मजबूत करता है। राख पर बना युद्ध विराम, ये है शर्तें। क्रूर, असमान और न तो आपसी समझौते से पैदा हुई बल्कि हताशा, दबाव और विश्वव्यापी निंदा से। इन शर्तों में कोई न्याय नहीं है, केवल जीवित रहना। अभी तक कोई जवाबदेही नहीं, केवल विराम। और युद्ध विराम का भाषा ही उन परिस्थितियों को छिपाता है जिनमें यह समझौता हुआ, एक विनाशकारी क्षेत्र की राख, एक लक्षित आबादी का आघात और कानूनी मानदंडों और मानवीय गरिमा का व्यवस्थित छीनना। आगे क्या होगा, राजनीतिक, कानूनी, नैतिक रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दुनिया इस युद्ध विराम को अंत के रूप में मानती है या एक शुरुआत के रूप में। एक परेशान करने वाली इतिहास। हर युद्ध विराम में उम्मीद होती है, उम्मीद की बंदूकें चुप रहेंगी, कि नागरिक अंततः घर लौट सकेंगे, कि बच्चे बिना मलबे के नीचे जागने के डर के सो सकेंगे। लेकिन इतिहास, विशेष रूप से इजरायल का युद्ध विराम के साथ इतिहास, उस उम्मीद को यथार्थवाद के साथ संतुलित करता है। इजरायल का युद्ध विरामों को तोड़ने या कमजोर करने का एक लंबा, अच्छी तरह से प्रलेखित पैटर्न है, कभी कभी घंटों के भीतर, अक्सर गणनात्मक सैन्य कार्रवाइयों के माध्यम से जो पूर्वनिरोधी या रक्षात्मक के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। हालांकि युद्धविराम उल्लंघन एक पक्ष के लिए अद्वितीय नहीं है, रिकॉर्ड स्पष्ट है, इजरायल ने बार बार उन समझौतों को तोड़ा है जिन्हें उसने या तो हस्ताक्षर किया था या जिनके लिए उसने मध्यस्थता में मदद की थी, खासकर जब सैन्य या राजनीतिक अवसरवाद ने इसकी मांग की। टूटे हुए युद्धविरामों की समय रेखा। वर्ष पक्ष, मध्यस्थ, मुख्य शर्ते, पतन या उल्लंघन। डैश 1949 अरब इजरायल युद्ध विराम, संयुक्त राष्ट्र शत्रुता का अंत, डिमिलिट्राइड जोन इजरायली सैनिकों का सीरियाई डीएमजी में घुसपैठ ने संघर्ष को फिर से भड़काया। 1982 अमेरिका द्वारा मध्यस्थता लेबनन युद्ध विराम, पीएलओ का निकासी, अमेरिकी नागरिक गारंटी सबरा और शतीला नरसंहार, 2,000-3,500 मृत इजरायल द्वारा सक्षम फालंगिस्ट प्रवेश के बाद। 2008 मिस्र द्वारा मध्यस्थता हमास इजरायल युद्ध विराम, आपसी शांति, नाकाबंदी में ढील, 4 नवंबर 2008 को टूटा आईडीएफ द्वारा गाजा सुरंग में छापे से संघर्ष तुरंत बढ़ गया। 2012 मिस्र द्वारा मध्यस्थता युद्ध विराम, रक्षा का स्तंभ हमलों को रोकना, घेराबंदी में ढील, नाकाबंदी बनी रही, महीनों के भीतर आवधिक उल्लंघन फिर से शुरू। 2014 गाजा युद्ध के दौरान मानवीय युद्ध विराम, दैनिक युद्ध विराम घंटों के भीतर ढह गया, दोनों पक्षों ने हमले फिर से शुरू किए। 2021 वॉल्स के संरक्षक के बाद युद्ध विराम मिस्र, अमेरिका द्वारा मध्यस्थता, हफ्तों बाद इजरायली हवाई हमले फिर से शुरू। नवंबर 2023 अस्थायी गाजा युद्ध विराम, बंधक कैदी विनिमय, 1 दिसंबर 2023 को समाप्त, अगले दिन बमबारी फिर से शुरू। नवंबर 2024 इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध विराम, अमेरिका द्वारा मध्यस्थता, 13 बिंदु समझौता, दक्षिणी लेबनन में इजरायली हवाई हमले 2025 तक जारी रहे। मध्य 2025 इजरायल सीरिया डी एस्केलेशन, दक्षिणी सीरिया में स्थानीय युद्ध विराम के बावजूद दमिश्क और सुबायदा में इजरायली हमले जारी रहे। अक्टूबर 2025 वर्तमान गाजा युद्ध विराम, 3 चरणीय अमेरिकी ढांचा कार्यान्वयन अनिश्चित, गाजा के बड़े हिस्से कब्जे में और सहायता सीमित। उल्लंघन के पैटर्न। लगभग हर मामले में युद्ध विराम का पतन एक न्यायोचित नैरेटिव के साथ हुआ है, एक खतरे को निष्प्रभावी करना, एक सुरंग को नष्ट करना, एक रॉकेट को रोकना। ये औचित्य शायद ही कभी जांच के सामने टिकते हैं और अक्सर रणनीतिक रूप से समयबद्ध प्रतीत होते हैं, जो घरेलू राजनीतिक बदलावों या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, नवंबर 2008 का युद्ध विराम अमेरिकी चुनावों के समापन के साथ ही एक इजरायली छापे द्वारा तोड़ा गया, संभवतः अमेरिकी विदेश नीति में अपेक्षित बदलावों को पहले से रोकने के लिए। 2023 का युद्ध विराम तब ढह गया जब इसकी अल्पकालिक उपयोगिता समाप्त हो गई। यहाँ तक कि उन समझौतों में जो स्पष्ट रूप से मानवीय संरक्षण पर केंद्रित थे, जैसे 2014 और 2021 की युद्धविराम, इजरायली ऑपरेशन नागरिक आबादी की सुरक्षा और आराम के अधिकार की परवाह किए बिना फिर से शुरू हुए। 2025 का युद्धविराम, हालांकि इसे अधिक व्यापक के रूप में प्रचारित किया गया है, पहले से ही संरचनात्मक कमजोरी के संकेत दिखा रहा है। सहायता अभी भी प्रतिबंधित है, गाजा के भीतर आवाजाही को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है और आईडीएफ की जमीनी सेनाएं बड़े क्षेत्रों से पूरी तरह से पीछे नहीं हटी हैं। इजरायली नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस युद्धविराम को रणनीतिक विराम के रूप में संदर्भित किया है, न कि शांति की ओर एक कदम। यह भाषा इस व्यवस्था की अस्थायी त्याज्य प्रकृति को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, चयनात्मक अनुपालन। इजरायल की युद्धविरामों को लगभग पूर्ण दंडमुक्ति के साथ उल्लंघन करने की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सार्थक जवाबदेही की कमी से सक्षम होती है। जबकि युद्धविराम समझौते अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित भाषा के साथ मध्यस्थता किए जाते हैं, प्रवर्तन दुर्लभ है। संयुक्त राष्ट्र की निंदा को वीटो कर दिया जाता है। आईसीसी की जाँच में देरी होती है या बाधित की जाती है। और प्रभावशाली पश्चिमी देश, विशेष रूप से संयुक्त राज्य, ने ऐतिहासिक रूप से इजरायल को परिणामों से बचाया है। यह पैटर्न न केवल फिलिस्तीनियों की युद्धविरामों में विश्वास को कम करता है, बल्कि स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता को भी। जब उल्लंघन नियमित और दंडमुक्त हो जाते हैं, तो युद्धविराम शांति के बारे में कम और रणनीतिक पुनर्समायोजन के बारे में अधिक हो जाते हैं। अगले आक्रमण से पहले अस्थायी रीसेट। सबरा और शतीला की गूंज। अक्टूबर 2025 के युद्धविराम की शर्तें व्यापक होने से कोसों दूर हैं। हालांकि वे तात्कालिक मुद्दों को संबोधित करती हैं, जैसे बंधकों का विनिमय, सीमित मानवीय पहुंच और आंशिक सैन्य पुनर्स्थापन, वे भयावह अंतराल भी छोड़ती हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अनसुलझी मांग है कि हमास के लड़ाकों को निरस्त्र करना होगा या गाजा छोड़ना होगा भविष्य की बातचीत के चरणों में। कागज पर यह निरस्त्रीकरण की ओर एक कदम प्रतीत हो सकता है, लेकिन व्यवहार में यह एक भयावह ऐतिहासिक वजन रखता है, एक वजन जो बेरूत 1982 की गूंज देता है। उस वर्ष की गर्मियों में इजरायल के लेबनन पर आक्रमण के दौरान इजरायल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के बीच एक अमेरिका द्वारा मध्यस्थता युद्धविराम हुआ। केंद्रीय वादा था पीएलओ के लड़ाके पश्चिमी बेरूत छोड़ देंगे और बदले में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। अमेरिकी आश्वासनों के तहत पीएलओ की वापसी की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल आए, लेकिन सितंबर तक वे बल समय से पहले और अपने पूर्ण जनादेश को पूरा किए बिना चले गए। जो हुआ वह आधुनिक मध्य पूर्व इतिहास पर सबसे गहरे धब्बों में से एक बना हुआ है। सितंबर 1982 में इजरायली सैनिकों ने पश्चिमी बेरूत में सबरा और शतीला शरणार्थी शिविरों को घेर लिया। फिर तीन दिनों तक इजरायली कमांडरों ने लेबनानी ईसाई फालंगिस्ट मिलिशिया को शिविरों में प्रवेश करने की अनुमति दी। मिलिशिया सांप्रदायिक प्रतिशोध और दंडमुक्ति से प्रेरित होकर 2000 से 3500 फिलिस्तीनी और लेबनानी नागरिकों का नरसंहार किया, जिनमें से अधिकांश महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पुरुष थे। दुनिया ने आतंक के साथ देखा जब शव ढेर हो गए। इजरायल की अपनी काहन आयोग 1983 में सार्वजनिक दबाव में बुलाई गई, ने निष्कर्ष निकाला कि इजरायल रक्षा बलों की अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी थी नरसंहार के लिए। तत्कालीन रक्षा मंत्री एरियल शेरोन को रक्तपात को रोकने में विफलता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी ठहराया गया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इजरायली राजनीति में एक शक्तिशाली व्यक्ति बने रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और आगे जाकर नरसंहार को नरसंहार का कृत्य करार दिया, एक शब्द जो दशकों तक गूंजता रहा। सबरा और शतीला की छाया आज गाजा पर भारी पड़ती है। वर्तमान युद्धविराम का अंतर्निहित सुझाव कि लड़ाकों को नागरिक सुरक्षा के बदले में छोड़ना होगा 1982 के झूठे आश्वासनों को दर्शाता है। तब और अब सशस्त्र प्रतिरोध की वापसी को शांति का रास्ता बताया जाता है, लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि जब प्रतिरोध चला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक चले जाते हैं, जो लोग पीछे रह जाते हैं वे सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। जोखिम सैद्धांतिक नहीं है। उत्तरी गाजा में, जो लगभग नागरिकों से खाली है और सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पहले से ही सामूहिक कब्रें मिली हैं। सहायता कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने निष्पादन शैली की हत्याओं, यातना के संकेतों और कुछ मामलों में पूरे परिवारों के ढह गई इमारतों के नीचे दफन होने के संकेतों को दस्तावेज किया है, जहां कभी कोई बचाव नहीं हुआ। ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये संभावित अग्रदूत हैं। यदि युद्धविराम के भविष्य के चरणों में हमास की वापसी या निरस्त्रीकरण शामिल है बिना मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के, इतिहास हमें ठीक ठीक चेतावनी देता है कि आगे क्या हो सकता है। सबरा और शतीला नरसंहार केवल एक दुरस्त त्रासदी नहीं है, यह एक मिसाल है एक खाका की, जब सैन्य बल सत्ता के शून्य का शोषण करते हैं, जब नागरिकों से सुरक्षा छीन ली जाती है और जब दुनिया मिशन पूरा घोषित करने के बाद पीठ फेर लेती है, तो क्या हो सकता है। बेरूत 1982 की गूंज अब गाजा में 2025 में सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या कोई वास्तव में सुन रहा है और क्या इस बार परिणाम को रोका जा सकता है। इजरायली मीडिया में असंगति। जब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों ने अक्टूबर 2025 की युद्धविराम को लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता के रूप में प्रचारित किया, इजराइल के भीतर एक बहुत अलग नैरेटिव ने जोर पकड़ा, विशेष रूप से हिब्रू भाषा के मीडिया में, जहां विदेशी संवाददाता कूटनीति, डीएस्केलेशन और मानवीय शुरुआत की बात कर रहे थे, वहीं अधिकांश इजरायली आउटलेट्स ने युद्धविराम शब्द का उपयोग पूरी तरह से टाल दिया। इसके बजाय प्रमुख ढांचा संकीर्ण, अधिक लेन देने वाला था, एक बंधक विनिमय सौदा, न कि एक राजनीतिक या सैन्य डीएस्केलेशन। यह अंतर केवल शब्दार्थ ही नहीं है, यह एक गहरी वैचारिक और रणनीतिक असंगति को दर्शाता है कि युद्ध को इजराइल की सीमाओं के बाहर कैसे देखा जाता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है, बचाव किया जाता है और संभवतः इसके भीतर लंबा किया जाता है। धारणा का प्रबंधन, युद्धविराम बनाम आत्मसमर्पण। इजराइल के भीतर युद्धविराम की घोषणा करने का मतलब होगा सक्रिय सैन्य अभियानों का अंत, बमबारी में ठहराव और संभवतः कुछ के लिए अकल्पनीय हमास के प्रति रियायत। दो साल से अधिक समय तक इजरायली सरकार, सेना और मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र ने जनता को बताया है कि गाजा में पूर्ण विजय ही एकमात्र स्वीकार्य परिणाम है। घोषित लक्ष्य थे हमास का पूर्ण विनाश, गाजा का स्थायी निरस्त्रीकरण और कई मंत्रियों के शब्दों में गाजा की आबादी का स्वैच्छिक स्थानांतरण या हटाना। अब युद्धविराम को स्वीकार करना उस नैरेटिव का खंडन करना है। यह जनता को इस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि युद्धपूर्ण विजय में समाप्त नहीं हुआ है, कि भारी सैन्य बल के बावजूद हमास आंशिक रूप से बरकरार है, गाजा आंशिक रूप से खड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण फिलिस्तीनी बने हुए हैं। समझौते को केवल बंधक विनिमय के रूप में प्रस्तुत करके इजरायली अधिकारी और मीडिया आउटलेट रणनीतिक ताकत की मुद्रा बनाए रखते हैं। यह उन्हें जनता को यह बताने की अनुमति देता है कि यह शांति नहीं है, समझौता नहीं है, सिर्फ एक रणनीतिक कदम है ताकि इजरायली बंधकों को घर लाया जा सके। पिछले बयानबाजी के साथ विरोधाभास। यह बयानबाजी असंगति विशेष रूप से तब और स्पष्ट होती है जब इसे युद्ध के दौरान प्रमुख इजरायली हस्तियों के बयानों के साथ तुलना की जाती है। कई सरकारी मंत्रियों, गठबंधन के सदस्यों और प्रभावशाली पंडितों ने गाजा की जातीय सफाई के लिए खुले तौर पर आह्वान किया। खनिसेट भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट और लेखों में गाजा के भविष्य को पुनर्निर्माण के संदर्भ में नहीं बल्कि पुनर्विकास के रूप में वर्णित किया गया, जैसे कि प्राइम समुद्र तटीय रियल एस्टेट जो आबादी के हटने के बाद इजरायली बस्तियों के लिए तैयार है। कुछ ने खुले तौर पर गजांस के बिना गाजा की कल्पना की, एक परियोजना जिसमें बड़े पैमाने पर विस्थापन, स्थायी कब्जा और तटीय क्षेत्र से फिलिस्तीनी जीवन और इतिहास का मिटाना शामिल होगा। ये कोई हाशिए की आवाजें नहीं थीं, ये सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर से आईं, टेलीविजन पैनलों पर गूंजी और अक्सर मुख्यधारा के प्रवचन में बिना चुनौती के छोड़ दी गईं। अब युद्धविराम या बातचीत की बात करना अधिकतमवादी दृष्टिकोणों से सार्वजनिक रूप से पीछे हटना होगा, यह स्वीकार करना कि राजनीतिक वास्तविकता में वापसी अनिवार्य हो सकती है। यह एक ऐसा कदम है जिसे कुछ ही नेता उठाने को तैयार हैं। क्या यह एक रणनीतिक विराम है या नीति में बदलाव? केंद्रीय सवाल फिर यह है कि क्या युद्धविराम एक वास्तविक दिशा परिवर्तन का संकेत देता है या केवल एक अस्थायी विराम, एक रणनीतिक ठहराव जो बंधकों को वापस लाने और सैन्य अभियानों को फिर से शुरू करने से पहले पुनर्गठन के लिए है। कई संकेतक बाद वाले की ओर इशारा करते हैं। सार्वजनिक बयानों में इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा अधिकारियों ने बार बार जोर दिया है कि युद्धविराम सशर्त और उलझने योग्य है। भाषा युद्धप्रिय बनी हुई है, अगर हमास समझौते का उल्लंघन करता है तो हम गाजा में लौट आएंगे या यह अभियान का अंत नहीं है। सैन्य प्रवक्ता उत्तरी गाजा को बंद युद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित करना जारी रखते हैं और आईडीएफ सैनिकों की रोटेशन उन क्षेत्रों में सक्रिय बनी हुई है जो वापसी के लिए नामित हैं। इजरायली सार्वजनिक क्षेत्र में युद्ध के नागरिक नुकसान, कब्जे के कानूनी निहितार्थ या गाजा के दीर्घकालिक राजनीतिक भविष्य पर सार्थक चिंतन की अनुपस्थिति से पता चलता है कि यह अभी तक एक हिसाब का क्षण नहीं है बल्कि एक पुनर्समायोजन का। दो वास्तविकताएं, एक युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में युद्धविराम को शांति की दिशा में एक आवश्यक कदम, अभूतपूर्व विनाश के बाद एक संभावित मोड़ के रूप में सराहा जा रहा है। लेकिन इजरायल के भीतर नैरेटिव एक पहले के चरण में जमा हुआ है, युद्ध आवश्यकता के रूप में, फिलिस्तीनी खतरे के रूप में और शांति आत्मसमर्पण के रूप में। यह विभाजित स्क्रीन वास्तविकता, विदेश में कूटनीति और घर पर इनकार अगले कदम के बारे में गहरे सवाल उठाती है। क्या युद्ध विराम तब तक टिक सकता है जब इसके आधे हस्ताक्षरकर्ता इसे नाम देने से इनकार करते हैं? क्या बंधकों का विनिमय उन कारणों का सामना किए बिना हो सकता है कि वे पहली बार में क्यों लिए गए थे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या शांति की शर्तें कभी उभर सकती हैं जब प्रमुख राजनीतिक परियोजना अभी भी सीमा की दूसरी ओर के लोगों को मिटाने की दिशा में है? केवल समय ही बताएगा कि क्या इजरायली नेतृत्व ने वास्तव में दिशा बदल दी है, या क्या यह युद्ध विराम इससे पहले के कई अन्य की तरह केवल विनाश के अगले दौर से पहले एक ठहराव है गाजा के लोगों के लिए। मैं आशा करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि युद्ध विराम टिके, लेकिन मैं इस पर अपनी जिंदगी नहीं दांव पर लगाऊंगा और आपको भी नहीं चाहिए। अपने परिवारों से फिर से मिलें, अगर आप कर सकते हैं तो उत्सव मनाएं। आपने इससे कहीं अधिक और बहुत कुछ कमाया है, लेकिन सतर्क रहें। अपने भोजन और पानी के भंडार को फिर से भरें। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे जानते हों कि अगर चीज़ें फिर से शुरू हों तो कहाँ जाना है। सुनिश्चित करें कि आप जानते हों, क्योंकि अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वह यह है कि ये शांतियाँ अक्सर तूफान का आँख होती हैं, इसका अंत नहीं। यदि सीमाएं खुलती हैं और आप जाना चाहते हैं तो तैयार रहें, यदि आप रहना चुनते हैं तो तैयार रहें। युद्ध विराम कल, अगले हफ्ते, अगले महीने टूट सकता है। आपको फिर से विस्थापित होना पड़ सकता है, आपको फिर से भागना पड़ सकता है। और मैं यह नहीं कहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह सच हो, बल्कि इसलिए क्योंकि यह हो सकता है, क्योंकि यह पहले हो चुका है। मैं नहीं चाहूंगा कि इजरायल जीते, मैं नहीं चाहूंगा कि वे आपके घरों और आपकी यादों के आखिरी टुकड़ों को समतल कर दें, आपके जीवन को मिटा दें और इसे पुनर्विकास कहें, लेकिन आपकी जिंदगी किसी भी जमीन के टुकड़े से ज्यादा कीमती है। आप ज्यादा कीमती हैं। जीवित रहने के लिए जो करना पड़े करें, जीवित रहना आपके लिए जो भी हो वह करें, क्योंकि गाजा सिर्फ भूगोल नहीं है, यह सिर्फ रेत और समुद्र नहीं है, गाजा आप हैं, और जब तक आप जीवित हैं गाजा जीवित है। जीवित रहें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, अब नजरें न फेरें, शांति की घोषणा न करें और आगे बढ़ें। मध्य पूर्व को एक बार फिर इजरायल और संयुक्त राज्य को जैसा चाहे वैसा करने के लिए न छोड़ें। गाजा में युद्ध विराम जितना नाजुक और सीमित है अपने आप नहीं हुआ, इसे दबाव, विरोध, आक्रोश और नजरअंदाज करने के लिए बहुत भारी सबूतों ने अस्तित्व में लाया। उस दबाव को कम नहीं होने देना चाहिए जब तक न्याय नहीं हो जाता। गाजा पर नजर रखें, फिलिस्तीन पर कान रखें। कब्जा खत्म नहीं हुआ है, इजरायली सैनिक अभी भी गाजा के उत्तर, इसकी सीमाओं, इसके हवाई क्षेत्र, इसकी सहायता, इसके जनसंख्या रजिस्टर को नियंत्रित करते हैं। वेस्ट बैंक अभी भी घेराबंदी में है, बस्तियां विस्तार करती रहती हैं, चेकपॉइंट्स अभी भी दैनिक जीवन को दबाते हैं, प्रशासनिक हिरासत बिना मुकदमे, बिना उचित प्रक्रिया के जारी है, और अलगाव की मशीनरी बरकरार है। इस युद्ध विराम को चुप रहने का बहाना न बनने दें, सरकारों को कूटनीति का उत्सव मनाने न दें जबकि वे कब्जे के एक पक्ष को हथियार देना जारी रखते हैं। हर मोर्चे पर दबाव बनाए रखें, जब तक इजरायल गाजा और वेस्ट बैंक के अपने कब्जे को समाप्त नहीं करता, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आदेश दिया है और बार बार संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों द्वारा पुनः पुष्टि की गई है। जब तक सभी फिलिस्तीनी बंधक, जो बिना मुकदमे, बिना आरोप, बिना अधिकारों की हिरासत में हैं, रिहा नहीं हो जाते, जब तक दो राज्य समाधान केवल एक नारा नहीं है बल्कि सीमाओं, अधिकारों और संप्रभुता में निहित एक वास्तविक, लागू करने योग्य वास्तविकता है, जब तक इजरायली नेता और इजरायल स्वयं कानून के सामने नहीं लाए जाते, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जवाबदेह ठहराए जाते हैं जैसे कोई अन्य राज्य जिसने गंभीर अपराध किए हैं, न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती, जवाबदेही के बिना न्याय नहीं हो सकता, और अगर दुनिया देखना बंद कर देती है तो न तो शांति होगी और न ही न्याय। गाजा के लोग एक समाचार चक्र नहीं है, वे एक ऐसा कारण नहीं है जिसे उठाया और छोड़ दिया जाए, वे अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी, दंडमुक्ति और चयनात्मक आक्रोश के परिणामों को जी रहे हैं। उस चुप्पी को यहीं खत्म होने दें। निष्कर्ष, एक ठहराव या अंत? यह युद्धविराम एक अंत की तरह महसूस हो सकता है। बम रुक गए हैं अभी के लिए, सुर्खियां बदल रही हैं, सहायता धीरे धीरे आने लगी है, कुछ परिवार फिर से मिल गए हैं, कुछ बच्चे पूरी रात सोए हैं। लेकिन गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए यह अंत नहीं है, यह एक ठहराव है, एक नाजुक अस्थायी क्षण जो जीवित रहने और नवीनीकृत हिंसा की संभावना के बीच निलंबित है। बहुत कुछ अनसुलझा रह गया है, बहुत सारे झूठ अभी भी हवा में तैर रहे हैं कि कब्जा मौजूद नहीं है, कि गाजा कभी मुक्त था, कि हजारों नागरिकों की मृत्यु किसी तरह आत्मरक्षा है। दुनिया ने वास्तविक समय में भयावहता को देखा, अस्पतालों को नष्ट होते देखा, पत्रकारों को मरते देखा, पूरे पड़ोस को मरते देखा, और फिर भी इसे वह नाम देने में संघर्ष किया जो यह था। लेकिन नाम मायने रखते हैं, इतिहास मायने रखता है, और सत्य यह है, पिछले 2 वर्षों में गाजा में जो हुआ वह समान लोगों के बीच युद्ध नहीं था, यह एक संघर्ष नहीं था, यह एक फंसी हुई नागरिक आबादी के खिलाफ व्यवस्थित निरंतर अभियान था, और इसे नरसंहार कहा गया, न केवल कार्यकर्ताओं द्वारा बल्कि डॉक्टरों, विद्वानों, संयुक्त राष्ट्र जांचकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। यह युद्ध विराम, हालांकि आवश्यक है, एक समाधान नहीं है, यह जो हुआ है उसे पूर्ववत नहीं करता, यह मृतकों को वापस नहीं लाता, यह नाकाबंदी को समाप्त नहीं करता, यह घरों, सुरक्षा या संप्रभुता को बहाल नहीं करता, यह फिलिस्तीन को मुक्त नहीं करता। आगे का एकमात्र रास्ता न्याय के माध्यम से है, वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय लागू करने योग्य न्याय। इसका मतलब है मुकदमे, इसका मतलब है मुआवजा, इसका मतलब है कब्जे का अंत, न केवल शब्दों में बल्कि कार्यों में। इसका मतलब है राजनीतिक इच्छाशक्ति और एक ऐसी दुनिया से राजनीतिक जोखिम जो बहुत लंबे समय तक इजरायली दंडमुक्ति को सक्षम करती रही है। यदि यह क्षणिक मोड़ बन जाता है तो यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेताओं ने अचानक नैतिकता को चुना, यह इसलिए होगा क्योंकि लोग, दुनिया भर में लाखों लोग, देखना बंद करने से इनकार कर चुके हैं, चिल्लाना बंद करने से इनकार कर चुके हैं, चुप्पी को शांति के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं। अक्टूबर 2025 का युद्धविराम एक दिन किसी चीज की शुरुआत के रूप में याद किया जा सकता है, या इसे एक और नरसंहार से पहले एक और ठहराव के रूप में याद किया जा सकता है। इस बार विकल्प केवल इजराइल का नहीं है, यह हम सभी का है।